ओम शांति। विषय है प्रकृति से प्यार कैसे करें। भगवान भी प्यार का ही भूखा आता है। तो प्रकृति एक हमारी जो है मां है, क्योंकि सतयुग से लेकर अभी तक प्रकृति हमारी पालना करती रही है। प्रकृति हमेशा देती है। तो हमारा प्यार वास्तव में किससे होता है, जिससे हमको कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा देता ही रहता है उससे प्यार स्वतः हो जाता है। तो प्रकृति हमेशा हमको देती रहती है, हमारे से कुछ लेती नहीं है वो। अगर हम प्रकृति का दोहन भी करते हैं तो भी हमको वो देती रहती है। जैसे माँ है, अपने बच्चों को हमेशा वो देती रहती है। बच्चे भले कैसे भी हो जाएं, कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चों के प्रति अपना पूरा न्योछावर कर देती है। सुधारने के लिए मार भी देती है वाला। तो प्रकृति हमारी माँ है, वो हमारा एक सुरक्षा कवच है। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसलिए प्रकृति के प्रति भी हमारे कुछ तो दायित्व है। जिस प्रकृति ने हमको पालना दी है, अनेक जन्मों से हमको पाला पोसा है, बोझ को दिया है, उस प्रकृति के प्रति भी हमारे अभी कुछ दायित्व बनते हैं। क्योंकि फिर से हमें पूरे 84 जन्म, पूरे 5000 वर्ष, पूरे कल्प उसी के साथ रहना है। हमेशा हम प्रकृति की गोद में रहे हैं। स्वर्ग से लेकर अभी तक 5000 वर्ष ने हमने कितना भोजन किया होगा, कितने ट्रकों के ट्रक खा गए होंगे हम। ट्रक नहीं खा गए माने उसमें जो भोजन किया है। कितना पानी पिया होगा आज तक, कितनी ऑक्सीजन ली होगी। हाँ जी, फिर जिन हम बिल्डिंगों में रहे हैं उतना मटेरियल लिया प्रकृति से। माना इस आत्मा का प्रकृति के साथ कितना लगाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हद की प्रकृति में बंध गए हैं, इसलिए बेहद की प्रकृति से हम दूर हो गए। और उस बेहद की प्रकृति से दूर होने के कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की कमजोरियां आती हैं। क्योंकि प्रकृति में वास्तव में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां समाई हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन करती हैं। जैसे बाबा से हम सर्व शक्तियां लेकर अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करते हैं, स्वयं को पवित्र बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं, इसी तरह प्रकृति भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव लाती है। परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, इन तीनों चीजों पर तो सारी सृष्टि टिकी हुई है। भगवान को भी अगर यहां आना पड़ता है, उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। उसके बिना वो भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसके बिना वो भी अपना प्यार उड़ेल नहीं सकता बच्चों के ऊपर, उसके बिना वो भी अपना ज्ञान नहीं सुना सकता, हमारा बदलाव नहीं कर सकता। तो जितना हमारा भगवान से प्यार है, उतना इस बेहद की प्रकृति से, इस हद की देह की प्रकृति से नहीं, बेहद की प्रकृति से भी हमारा प्यार उतना ही होना चाहिए। तो हमें हमेशा समृद्धि रहनी चाहिए कि इस प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है। और उससे हमारा प्यार तब बढ़ेगा जब हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा उसके सानिध्य में जाएंगे। लेकिन होता क्या है, मनुष्य अपनी स्वार्थ बस अनेक प्रकार की लालची प्रवृत्तियां हैं या अपनी हद की मनोकामनाएं हैं, उन्हीं को पूर्ण करते करते सारा जीवन ऐसे गवा देता है। और प्रकृति का जो आनंद लेना चाहिए, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उससे हमको प्राप्ति होती है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। और फिर हमारा दृष्टिकोण भी एक संकुचित सा बनकर रह जाता है, बेहद की मानसिकता नहीं रहती है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर हमको प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि जहां हम शहरों में रहते, प्रकृति कहां से उसका निहारेंगे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रकृति में जाने का वक्त ना हो, थोड़ा टाइम तो हर कोई निकाल सकता है। कि जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो अनेक प्रकार की शक्तियां हमारे इर्द गिर्द हमें शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी हम महसूसता कर सकते हैं कि वो हमारा चक्कर काट रही है, क्योंकि हमने प्रकृति को कल्प कल्प पावन बनाने की हमने भी तो सेवा की है ना। जिस प्रकृति ने हमको इतनी पालना दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, मोहब्बत दी, उस प्रकृति के प्रति भी हमारा उतना ही प्यार होना चाहिए, उतनी ही पालना करनी चाहिए। प्रकृति ना केवल हमारी पालना करती है बल्कि वो हमें शिक्षा भी बहुत देती है। एक एक चीज से शिक्षा लेने जैसी अनेक प्रकार की बातें हमें हमारे समक्ष आती हैं। एक एक तत्वों को देखें, पेड़ पौधों को देखें, या जो पशु पंछी हैं इनको देखें, अनेक प्रकार की शिक्षाएं जैसे हमको उनसे भी मिलती हैं, ना केवल वो सुनाते हैं बल्कि देखने मात्र से ही। जैसे सूर्य को हम ले लें तो सूर्य हमको क्या क्या देता है, लेकिन क्या हम सारे दिन में सूर्य के प्रति भी कुछ अच्छे अच्छे वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन उसको देते हैं? तो सूर्य भी हमको क्या क्या देता है, क्या क्या देता है सूर्य? ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, शक्ति देता है, हमारे अंधकार को भगाता है और हमारे भय को भगाता है। प्रकाश और रोशनी तो एक ही होगी, चलो ठीक है, हाँ जी, ताजगी देता है, है ना, फिर है नई आशाएं, नई किरण, नई उमंग, नई सुबह लेकर आता है, नई नई सुबह आती है। तो जैसे देखा होगा सूरज उगता है तो आसमान के रंग भी बदल जाते हैं, है ना, अगर बादल हो तो गुलाबी रंग, कुछ दिन पहले देखो ना, कई बार आप सवेरे देखेंगे तो सूरज जब उगता है तो कैसे लालिमा आ जाती है उस पर, और वो सूरज की लालिमा को देखकर हमारे मन का भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं, अगर कोई बीमार हो तो कहां उसको ले जाओ, कोई कोई पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति को देखकर आत्मा भी प्रेम विभोर उठती है, प्रेम से भरपूर हो जाती है। तो प्रकृति सूर्य हमारे मन में अनेक प्रकार की उमंगें भरता है, ऊर्जा भरता है, नई ऊर्जा का संचार करता है, कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है, कुछ प्रेरणाएं देता है वो, कुछ जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। तो सूर्य भी हमको क्या कह देता है, और जैसे सूर्य आता है तो हमारे मन में नए विचार आते, तो पुराने विचार भस्म हो जाते हैं, व्यर्थ को, जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकट है तो अज्ञान इधर विनाश, अर्थात जो व्यर्थ का किचड़ा है वो भी समाप्त हो जाता है। तो एक एक अगर प्रकृति के तत्वों के बारे में सोचे तो हमको क्या कुछ देता है वो। तो इसलिए प्रकृति से प्यार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग में अगर हमें उन्नति को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, हमारी उन्नति का तीव्र गति से विकास हो, तो उसके लिए प्रकृति का आधार लेना अति आवश्यक है। और उसको हम यथार्थ तरीके से आधार लेंगे तो हमारा विधिवत विकास हो पाएगा, नहीं तो हम वहीं कमी रह जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, और इस शरीर को उन प्रकृति के पांचों तत्वों की ऊर्जा अनिवार्य है, है ना। ज्ञान का तो ठीक है हमारे इस बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ उस प्रकृति के तत्वों का, उनकी सारी ऊर्जा, उनका भी हमको सहयोग लेना है। इसलिए जो भी संसार में देखा होगा, बड़े बड़े लेखक हुए, कवि हुए, उनके जो विचारों का प्रभाव, उनकी जो कल्पनाएं, जो हकीकत में उन्होंने अपने मन की कल्पनाओं को परिवर्तन किया, जो उनकी कल्पनाओं को पंख लगे, वो प्रकृति की गोद में जाकर लगे। कहीं नदी के किनारे बैठ के उन्होंने अपने चिंतन की धारा को प्रखर किया, कहीं झील के किनारे, कहीं प्रकृति के गोद में, अर्थात कहीं एकदम दूर जंगल में जाकर किया। और देखें आप, हम प्राचीन काल में देखते हैं तो इस संसार में जो ऋषि मुनि हुए, साधना कहाँ की उन्होंने? शहरों के अंदर नहीं की, प्रकृति की गोद में। तो जरूर कहीं ना कहीं उन ऋषि मुनियों, महात्माओं, तपस्वियों को भी, मनीषियों को भी, ऋषियों को भी कुछ तो प्रकृति के बारे में गहरी जानकारी होगी, कुछ गहरी अनुभूतियां हुई होंगी, तभी तो उन्होंने अपने संसार को पवित्रता के बल पर थाम कर रखा। तो उस प्रकृति में कितनी शक्ति है। तो हमको एक एक तत्व के प्रति भी हमारी जवाबदारी बनती है, हमारी दायित्व बनता है कि उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं पावन बनाने के, लेकिन उन कर्तव्यों को तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हमें उससे प्यार होगा। हम किसी को सहयोग देते हैं, सहयोग सबसे पहले उसी को देते हैं जिससे हमारा प्यार होता है, जिससे प्यार नहीं होता उसको सहयोग इतना नहीं देते हैं। तो इसी तरह से प्रकृति से अगर हमारा लगाव है, प्यार है, तो हमें हम रोजाना उसको सकाश दे सकते हैं। अगर हमारा प्रकृति के लगाव नहीं है तो हम अपने में उलझे रहेंगे। इसलिए अधिकतर इस ब्राह्मण लाइफ में भी क्या होता है, हम अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उन समस्याओं के भंवर जाल में पूरा टाइम निकल जाता है। बल्कि हमको इससे बाहर निकलना है, बेहद में जाना है। बाबा ने हम सबको बेहद में रहना सिखाया है, तो इस बेहद की दुनिया में प्रकृति की गोद में जाकर बेहद की दुनिया की सेवा करना अति अनिवार्य है। तो प्रकृति का हर तत्व हमको देखता है। अब इस धरती को हम ले लें तो धरती ने क्या क्या सिखाया हमको। 5000 साल से हम इस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती ने हमको क्या क्या दिया। हाँ जी, ये धरती एक मां की गोद है, आंचल है। जैसे मां अपने बच्चे को आंचल में समा लेती है, गोद में समा लेती है, तो 5000 वर्ष से प्रकृति मां हमको अपने आंचल में समाकर क्या क्या सहन कर रही है। इस जब ये प्रकृति स्वच्छ थी, आज ये प्रकृति कितनी गंदी हो गई है, और उस गंदगी को भी मां अपने आंचल में समाकर हमको पाल पोस कर हमको अच्छा अच्छा दे रही है। आज हम खेत में बीज बोते हैं, कितनी गंदी खाद डालते हैं, लेकिन वहां से धरती क्या देती है हमको, अच्छे अच्छे फल देती है। देखिए रेतीले रेगिस्तान में या रेतीली जगह पर तरबूज होता है, उसके अंदर कितना मीठा पानी होता है, लेकिन हम उस मीठे उस खा के हम पूरा कर देते हैं। लेकिन क्या उसके पीछे भी हम कुछ सोचते हैं, ये कहां से आया, उस किसान ने कितनी मेहनत की होगी, उस प्रकृति ने इसके अंदर कितना मीठा पानी भरा, जिस मीठे पानी को पीकर हम अंदर से कितने एकदम तरोताजगी हमारे अंदर आ गई, तुम्हारा कितना दायित्व बनता है। वो धरती हमको क्या क्या दे रही है, कितनी गंदगी को समेटे हुए है, उस गंदगी को दूर करके हमको अच्छी अच्छी चीजें दे रही है। वो फल, वो वृक्ष हमको क्या क्या दे रहा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल दे रहा है। हम उसको पत्थर मारे हैं, वो हमको फल दे रहा है, वो सहन कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो क्या हम उस प्रकृति से सीखकर हम अपने जीवन को भी, हमारा जीवन भी एक खुली किताब की तरह है कि सचमुच कोई सामने से अगर बोले तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर रहे हैं, या फल की तरह उसको भी कुछ अनुभव करा रहे हैं, है ना। बाबा के जीवन भी कैसा था, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना किया लेकिन कभी भी प्रतिक्रिया नहीं की, सिखाया अपने जीवन से। उसी तरह से हम भी उन बाबा के पद चिन्हों पर चलने में उतना दिन प्रतिदिन समर्थ बनते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वही डाके तीन बात, वही उसी पुराने ख्यालातों में, या वही उसी मुरली को उसी पुराने रीति रिवाज के अनुसार आत्मसात करने का प्रयास कर, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रही है। तो हर चीज को बाबा ने हमको परिवर्तन करने की शक्ति दी है। कोई भी हम चीज देखते हैं, चाहे लौकिक है, अलौकिक है, प्रकृति है या कुछ भी है, उसको हमको लौकिक में अलौकिकता में परिवर्तन करने की कला को हमको उपयोग में लाना है। अगर उन कलाओं का हम उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ की गति नहीं बढ़ती है। इसलिए हर चीज से सीखना है अपने को, है ना। धरती कितने फल दे रही है, कितना वो कितना बोझ उठाया हमारे ऊपर, हमारा ये पहाड़ कितना सामना करता है, एक चट्टान की तरह अचल अडोल रहता है। उसी तरह हम भी चट्टान की तरह अचल अडोल रहे, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आई, भावना ने कैसे सहन किया सारा, क्या 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 नहीं सुना, दादियों ने कितना सहन किया, आज वही पिलर मजबूत बनकर सारे विश्व को थामे हुए हैं। तो हमारे भी तो कुछ दायित्व बनते हैं ना। तो इसी तरह से हर प्रकृति के तत्वों के बारे में सोच सकते हैं, है ना। नदी है, पानी है, जल देता है, जल से क्या होता है, जल में कौन सी शक्ति है, शीतलता की शक्ति है, प्यास बुझाने की शक्ति है, बाढ़ की शक्ति भी है, है? हाँ, बाढ़ विनाश करके। उसी तरह हमारे अंदर की जो व्यर्थ की बाढ़ है वो भी हमको सिखा रही है कुछ ना कुछ। हाँ देखो, और बाबा ने कहा हुआ है अगर अंत में तुम्हारी लाइन क्लियर होगी तो जब भूकंप आएगा, पृथ्वी सारी हलचल में आएगी, तो 2 फुट में आकर आपके पास रुक जाएगी। लेकिन कब, कनेक्शन क्लियर हो और पहले से हमने उसकी सेवा की होगी। तो अगर मैं पहले से किसी की सेवा की नहीं है और उससे सहयोग की अपेक्षा रख ले तो कहां से सहयोग करेगा। तो प्रकृति के 5 तत्वों की रोजाना हमारे शुद्ध संकल्पों से, उस शुद्ध संकल्पों की शक्ति उसमें समाहित होनी चाहिए, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष हमको पालना लेनी है उससे। आकाश हमको क्या सिखाता है, बेहद में रहना सिखाता है, सब समा लेता है अपने, वो जैसे समुद्र समा लेता है अपने में, ऐसे आकाश भी समा लेता है। तो हमको हर एक की बात को समा लेना है, उन बातों को समा लेना है जो हमको नहीं फैलानी है, और जो अच्छी अच्छी बातें उनको भी समा लेना है, जो हमारी रगों में चली जाए। ऐसे हमको अग्नि क्या सिखाती है? जलना सिखाती है और रूप भस्म कर देती है, परिवर्तन की शक्ति है उसके अंदर। अगर उसके अंदर हम कोई बुरी चीज डालेंगे तो वो उसका उसको निखार करके बाहर निकालती है। तो उसी तरह हमारे अंदर भी ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि जलती रहनी चाहिए। उस दिन बताई थी ना सात प्रकार की अग्नियां, वैसे दूसरे रूप में बताई थी सात प्रकार की अग्नि कौन कौन सी थी। पवित्रता की अग्नि, योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, बेहद के वैराग्य की अग्नि, त्याग की अग्नि, प्रेम की अग्नि, लगन की अग्नि। तो हमारे अंदर भी अलौकिक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो उस अग्नि से भी हमको सीखने को मिलता है। तो इसी तरह प्रकृति का हर तत्व हमको कुछ ना कुछ दे रहा है। और प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करती है? किसी को से कोई भेदभाव नहीं करती है। निष्पक्ष रूप से हर आत्मा को वो देती है, भले उसको किसी ने कितना भी उसको कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी प्रकृति का सुधर्म है देना। तो हमारा भी सुधर्म कौन सा होना चाहिए? बाबा कहते हैं मित्र हमारा कौन है जो हमारी निंदा करे, और बाकी जो निंदा नहीं करे वो मित्र नहीं है, वो भी मित्र ही है। तो प्रकृति के प्रति हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, बाकी डुप्लीकेट है, बाकी मित्र है वो असली मित्र है। अच्छा ठीक है। तो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो प्रकृति के हर चीज से हमको सीखना है क्या दी तो, और उसके प्रति अभी हमारे दायित्व क्या क्या हैं, क्या दायित्व बनते हैं, प्रकृति हमारा कैसे और उसके प्रति हम कैसे रहें उसके साथ, ताकि उसका हमको सहयोग निरंतर स्वतः मिलता रहे, कैसे रहे? तो उसकी पहले हमको स्वच्छता रखनी है। स्वच्छता अभियान चलाते हैं संसार में, तो ऐसे हमें अपने मन के संकल्पों की स्वच्छता के साथ साथ हमको बाहरी स्वच्छता भी अनिवार्य है। स्वच्छ भारत अभियान, आज नदी नाले कितने गंदे हो गए हैं, उनको स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपये का बजट तैयार किया जाता है। तो हमारे भी तो कुछ दायित्व तो बनते हैं ना। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ऐसे कागज फेंक दिया तो भी प्रकृति की इंसल्ट है, उसकी बेइज्जती है। तो इसलिए हमको स्वच्छता के प्रति भी थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, कहीं कूड़ा करके टैस नहीं पड़ता, ना केवल बाहर बल्कि अपने कमरे की स्वच्छता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जितना हो सके हम अपने हाथों से करें। घर में स्वच्छता तो करते हैं, लेकिन किसी से कराए जमा उसी का होता है, भले वो पगार लेके जा रहा है, क्योंकि हम उसका काम उतारने का काम कर रहे हैं, किसी को पगार दे रहे। जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान की अगर हम अपने हाथों से स्वच्छता करें तो एक अंदर की जो आत्म संतुष्टि बनी रहती है उसका अलग ही महत्व होता है। तो स्वच्छता हमको बनाए रखनी है, तन मन की स्वच्छता है ना। और क्या प्रकृति के प्रति दायित्व हमारा? जितना चाहिए उतना ही करना, अर्थात यूज, हाँ, जल का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जिसको कहा, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के संरक्षण आते हैं। तो जल का संरक्षण करना है और वेस्ट नहीं करना, संरक्षण करना माना वेस्ट नहीं करना, और हाँ धन्यवाद का हमारे अंदर में उसके प्रति धन्यवाद के शब्द हमेशा निकलने चाहिए। उसने हमको बहुत कुछ दिया है इसलिए उसको धन्यवाद देते रहना है। और क्या करना है हमको? हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया, माफी भी मांगनी है ना। अगर गलती से कहीं थूक दिया तो माफी मांग लेनी है। और प्रकृति के प्रति हमने देखा पुराने टाइम में, हमारे सामने की बातें, बुजुर्ग लोग उसके प्रति बहुत संजीदा रहते थे, अर्थात कहीं भी अगर रात को अगर मिर्ची तोड़नी है तो सूरज ढलने से पहले तोड़ी जाती थी वो, उसके बाद नहीं। अगर लेनी है तो पहले उसे मांगा जाता था कि मिर्च के पेड़ में आपसे मिर्च ले रहा हूं। ऐसे हमने भी किया हुआ है, हमको पिताजी कहते मांग के ले आना, ऐसे नहीं तोड़ के लाना सीधा ही। तो पुराने जमाने में भी जो धरती पुत्र किसान जिसको कहा जाता है, उनका प्रकृति के प्रति कितना प्यार रहता है, तो सब चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये भी हमको माफी मांगनी है या उसका धन्यवाद का भाव। और दूसरा क्या करना है? पेड़ पौधे भी लगाने हैं, है ना। हमारी संस्था में भी क्या है, पेड़ पौधों को हरित क्रांति का अभियान चल रहा है, उसके लिए पीछे सबको सम्मानित भी किया गया है, कौन उसमें फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड में आए। तो स्वच्छता अभियान, क्योंकि संसार में जो देखा जाता है तो आजकल की गवर्नमेंट क्या देखती है? स्थूल कर्म को देखती है, हमारे वाइब्रेशन को थोड़ा ही देख रही है वो तो स्थूल से देख रही है कि सामाजिक सेवाओं में ये संस्था कितनी संलग्न है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में है, वो चीजें उनको नजर आती है। उसके हिसाब से ही वो संस्था को प्राथमिकता देते हैं, उसी के आधार पर ही वो संस्था की सराहना करते हैं। तो वो भी हमको देखना है, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता ना। अगर हम कहीं पेड़ पौधा नहीं लगाने जा रहे हैं तो कम से कम कोई पेड़ पौधे आसपास में उनको पानी डाल दे, कहीं पेड़ पौधे आसपास में उनके प्रति कोई अच्छे विचार सोचे। और ऐसा तो देखा गया है कि साइंस ने ऐसी भी रिसर्च निकाली है कि पेड़ पौधे सबसे ज्यादा जो हमारे संकल्पों को ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं। एक पौधे के आगे गाली दो तो कुछ दिन में सूख जाएगा वो, और एक पौधे के आगे गीत गाओ गुनगुनाओ तो वो हरा भरा हो जाएगा, वो भी मुस्कुराएगा हमको देख के। तो जब भी हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो हमेशा सोचना कि प्रकृति का हर पेड़ पौधा, हर उसका पत्ता हमको देख के मुस्कुरा रहा है, हम उसके प्रति अच्छे अच्छे विचार रखें। प्रकृति की गोद में जाने से बहुत सारी बातें, हमारा जो मानसिकता है, विचार की धारा एकदम बढ़ जाती है और बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पंछी चहचहा रहे हैं, चिड़ियों के चहचहाट, और अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो देखा गया है वो पंछी भी हमारे इर्द गिर्द हमारे चक्कर लगाएंगे, वो अनुभव करेंगे। तो जैसे प्रकृति हमको बचपन से देती है, और क्या दिया प्रकृति ने, जीवन रक्षक औषधियां दी है। कितने प्रकार की औषधियां हैं, है ना? लक्ष्मण को जो मूर्छित हुआ तो कौन सी बूटी थी, वो संजीवनी बूटी, अर्थात संजीवनी तो उसका नाम रखा गया, वो बेर बेर की, ऐसा भी बेर है ना, ऐसा भी सुनो जो शबरी ने बेर खाया ना, झूठा बेर, वो बेर वही बेर था, उसी क्या बूटी थी वो, उसकी जड़ को घुट्टी पिलाएगी उसकी, है ना। तो इन प्रकृति के जो जीवन रक्षक औषधियां हैं जो हमको प्राण देती हैं, तो कितना हमारा वो फायदा करती हैं, आयुर्वेदिक औषधियां। और कहीं कहीं तो संसार में ऐसा भी है, किसी का अगर स्वागत करते हैं तो पौधा देकर करते हैं, कहीं कहीं सांप देकर भी स्वागत करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में शायद कहीं है, घर में आते ना उसको सांप देते हैं, भागते नहीं है वो लोग, उनको आदत पड़ गई, वो जहरीला नहीं होता। यहाँ भी 3 दिन पहले सांप आया था, सवेरे 3:30 बजे। ओहो, फिर अच्छा, तो उसको पहचान में नहीं होगा, तो हमने पकड़ा था उसको 3:30 बजे, परसों हमने पकड़ा था, वो विशाल हमने माताओं के कमरे में घुस रहा था, हरे रंग का सांप था, तो हमको देवेंद्र भाई ने फोन किया, तो हम सवेरे सवेरे गए उसको पकड़ा फिर वो, तो देखना चाहिए उसको भी, क्योंकि वो जो पशु हैं या जो जल अपना थलचर हैं प्राणी, ये प्रकृति की संवेदनाओं को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इसलिए देखा हुआ जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो क्या होता है, उनको पहले पता पड़ जाता है और वो वहां से किनारा कर लेते हैं, क्योंकि उनका वो प्रकृति के संरक्षक है। अगर जंगल से जानवर गायब हो जाए तो जंगल दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी, थोड़े बहुत अगर जंगल बचे हुए हैं तो उनके खौफ से मनुष्य उनके अंदर नहीं जाता है, इसलिए वो प्रकृति की संवेदना को जल्दी कैच कर लेते हैं, कौन कौन सी हलचल होने वाली है। इसलिए जितना हम प्रकृति के समीप रहते हैं तो हमको भी बाबा कितना अंत में सब पता चल जाएगा, अगर हम प्रकृति के पास जाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमको समय प्रकृति के लिए जरूर देना है, और जितना हम प्रकृति को सागास देंगे उतना हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती भी बढ़ती जाएगी, कायम रहेंगी। तो स्वयं को देखना है कि प्रकृति के प्रति हमारा प्यार अगर नहीं है तो उसको बढ़ाना है, क्योंकि बिना प्यार के कोई कुछ देता नहीं है, लेकिन प्रकृति फिर भी दे रही है, तो हमें भी निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा करनी है। सेवा कैसे करेंगे, प्यार करना प्रकृति से अर्थात उसकी सेवा करना, तो कैसे सेवा करेंगे प्रकृति की, वाइब्रेशन देंगे, हाँ जी, हाँ, उसको दूषित नहीं करेंगे, उसको तंग नहीं करेंगे, उसके प्रति बुरे विचार नहीं करेंगे, उसको गाली नहीं देंगे, ठंड बहुत है, हाँ ये भी गाली है, बिल्कुल सही बात बोली, ठंड बहुत है, पता नहीं मुड़ मुड़ के आज भी आ रही ना, कोई सवेरे सवेरे बोल रहा था योग के बाद, ठंडी फिर से वापस आ गई, माना वो उनके जो चेहरे का एक्सप्रेशन था तो माना उसके प्रति एक अलग सा भाव है, एक है कि ठंड आ गई है, ठीक है आ गई है, बोल भी दिया, लेकिन चेहरा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, माना उससे वो थोड़ा दुखी है, कुपित हो गया वो तो ठंड आ गई, गर्मी बहुत है, अब ये गर्मी सर्दी तो होगी होगी, लेकिन हमने उसकी सेवा की है तो उस प्रकृति को, उस प्रकृति के साथ हमारे चलने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या उसके सहन करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती जाए, उसके प्रति ज्यादा विचार नहीं करें। अगर हम सर्दी ठंडी आ गई तो साधन भी तो प्रकृति ने दिए ना, ये साधन किसके हैं? प्रकृति ने दिए हैं। कितने साधन दिए हमको प्रकृति ने, अगर पालना कर रही है तो ऐसे नहीं है कोई स्थूल रूप से ही कितनी पालना कर रही है, सब संसाधन प्रकृति के हैं। तो हमको उसके प्रति ऐसा कुछ भाव नहीं होना चाहिए जो उसके प्रति हमारे ऐसे नेगेटिव विचार जाएं, तो वो विचार नेगेटिव विचार हमको नेगेटिव ऊर्जा देंगे फिर। तो प्रकृति के पास में डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालना है। अगर हम शहर में नहीं जा सकते हैं, घरों में होता है, महानगरों में जाते हैं तो वहां प्रकृति के पास में जाना मुश्किल होता है, लेकिन घर में चार गमले तो रख सकते हैं हम। चार गमले रखे, उनसे रोज प्यार करें, उनसे बात करें, उनको थोड़ा पानी दे, है जी, छत है, छत को हरा भरा बना दो, गार्डन है। अगर वहां पास में नहीं है तो कहीं ना कहीं महानगरों में गार्डन तो होते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होते हैं, तो सवेरे सवेरे पार्क पर जाकर हम पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, उसको संवार सकते हैं। ये तो आजकल देखा गया, देखो यहाँ नक्की लेक में भी पहले क्या हालत होती, देखी होगी सबने पहले, अभी कितने पेड़ पौधे होंगे। अब पूरे माउंट आबू वाले कहते हैं देखो घूमने के लिए वो नक्की जी ले आते हैं इधर उधर जाने के बजाय। तो सबको प्रकृति पसंद है, लेकिन करने के लिए कोई हाथ पीछे खींच लाती है। तो प्रकृति के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, जितना हमारा सहयोग। तो सबसे बड़ा सहयोग हम ब्राह्मणों तो ये बनता है कि मनसा की जो हमारी भावनाएं हैं, मनसा के जो संकल्प हैं, मनसा की जो शक्ति है, वो प्रकृति को हम दान करते रहे। महादानी बनना, आज के प्रधान में ना महादानी बनना है। तो कितना हम स्वयं को महादानी बना रहे हैं, कितने हमारे संकल्पों की शक्ति प्रकृति तक पहुंच रही है, उसको एक ऊर्जा दे रही है, उसको एक सकाश दे रही है, एक जीने के लिए एक, उसको भी तो जैसे हमको जीने के लिए वो रखती है, ऐसे हमारा भी तो दायित्व होता है ना उसके प्रति। तो प्रकृति के प्रति हमेशा हमको सजग रहना है। और प्रकृति से क्या मिलता है? हाँ, वो बताया कि जब डॉक्टर लोग कहते हैं कोई उदास हो जाता तो इसको घूमने फिरने ले जाओ, है ना, अंदर अंदर बैठे बैठे क्या होता है, दम घुटता है, घुटन होती है, इसलिए घर से अंदर ही बैठ रहेंगे तो बाहर निकल के चिंतन करने, घुटन सारी खत्म हो जाएगी। प्रकृति हमको खुशी देती है। और क्या होता है? हाँ, जैसे कई धर्म संस्था को, धर्म स्नापक हो या संत महात्मा को, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि पेड़ के वहां शाम भी बैठे हों, ज्ञान प्राप्त सारा ही हो जाएगा। जंगल तोड़, हाँ, जंगल काटने, वो ही तो जंगल काट काट कर तो ये हाल हुआ। तो उनका प्रति हमारे जंगल लगाने हैं अभी वाल, है ना, तो कितनी हरियाली थी वसुंधरा पर, इतनी हरी भरी वसुंधरा हमको क्या क्या देती थी, उस हरी भरी वसुंधरा से हमारे जीवन में कितनी हरियाली आ गई। इसलिए हमारा कुछ दायित्व बनता है कि उसके प्रति हम कुछ अच्छा सोचें, कुछ पेड़ पौधे लगाएं, स्वच्छता को बनाकर रखें, गीत गुनगुनाएं, वहां जाकर सोचें, कुछ चिंतन करें, जंगल में आग ना लगाएं। हाँ, कई बार, हाँ, ये तो एक आदिवासियों की परंपरा है, उसको कहते हैं अग्नि स्नान, जंगल को अग्नि स्नान कराते हैं, वो एक इनकी धार्मिक परंपरा है आदिवासियों की, प्राचीन काल से चली आ रही है। जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो वो जंगल में स्नान कराते हैं, और एक परंपरा होती है शिकार करने की, उसको राजस्थानी भाषा में हेड़ा परंपरा कहा जाता है, अर्थात शिकार जो होता है उसको भगा भगा मारते हैं और फिर वहीं पकाकर उसको खाते हैं जंगल में। तो खैर, हम तो आदिवासी तो हम भी हैं, लेकिन हम अनादि आदिवासी हैं, हम दूसरे आदिवासी हैं, असली वाले तो हम लोग हैं ना। तो इसके हमको ये भी देखना है। और साउंड पोल्यूशन नहीं, हाँ, साउंड का पोल्यूशन नहीं फैलाना है। और प्रकृति हम जाते हैं तो वहां तू में सेल्फी वेल्फी खींचने के चक्कर में रहने का, है ना, कई बार ऐसे ही होता है, घूमने तो एंजॉय करना, हाँ, सेल्फी लेके चल देते हैं और वो वहां की वहां एनर्जी रह जाती है, वो फोटो बाद में देखते भी नहीं, अगर चलो देखते भी होंगे तो वहां फोटो प्रकृति को थोड़ा देखते पीछे, अपने फोटो को देखेंगे, मेरा फोटो कैसे अच्छा है, ऐसे ही होता है ना, आसपास वाला सीन नहीं दिखता है ना, ऐसे पत्रिकाओं में फोटो आता है तो, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, लोगों से सुनने में मिलता है, हमारा फोटो नहीं आया पेपर में, और हमारे फोटो में वो ग्रुप में अपना फोटो देखेंगे वो, हाँ जी, हाँ। तो स्वयं के प्रति रहता सारा, प्रकृति के अगर गोद में हम जा रहे हैं, नेचर का जो अनुभव आनंद लेना है, तो वहां थोड़ा बैठें, चिंतन करें, उसको देखें, ऊपर से तारे चमक रहे हैं, चांदनी रात में जाएं, नीचे अनादरा पॉइंट में रात को जाओ, आजकल तो जाना खतरा होता है, तो देखने में ऐसा आता है, तो ऊपर से तारे हमको देख के कैसे मुस्करा रहे हैं, आसमान हमको क्या कह रहा है, चिड़िया क्या कह रही है, पंछी क्या कह रहे हैं, नदी नाले क्या कह रहे हैं, तो हमको सुनना है उसको गहरे से। उनकी भी एनर्जी हमारे प्रति बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आएगी अगर हम वहां बैठ के थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो, क्योंकि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, उसके वाइब्रेशन 24 घंटे हर आत्मा से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो निकलते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई वाइब्रेशन निकलते हैं जो हमारे अंदर कोल्डिंग है। तो अगर हम चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, मुरली का मनन चिंतन करते हैं, कोई विशेष टॉपिक के चिंतन मंथन करते हैं, तो वाइब्रेशन 24 आवर हमारे निरंतर फैल रहे हैं चारों तरफ। तो प्रकृति की गोद में हम करेंगे तो प्रकृति उन वाइब्रेशन को लेकर खुश होगी, मुस्कुराएगी, वो हमारे प्रति भी कुछ अच्छे अच्छे वाइब्रेशन हमको देगी, क्योंकि हम उसको सूक्ष्म रूप दे रहे हैं। और ये सारी सूक्ष्म प्रक्रिया है, आंखों से थोड़ी दिखाई देगी, और उस सूक्ष्म प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन में उमंग सा बना रहेगा। तो प्रकृति की गोद में हमको थोड़ा सा टाइम निकालना जरूर चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रकृति के प्रति कैसे प्यार करना है, करें प्रकृति से। हाँ, पशु पक्षी तो उनकी रक्षा करनी है, उनके साथ भी अत्याचार नहीं करना, जो भी पशु पंछी हैं किसी को मारना, उनसे भी प्यार करना है ना, ऐसे नक्की में खिलाते हैं, रोज सुबह सुबह बतके जो उनको खिलाते हैं। हम भी कई जाते तो बाकिंग जाते, 2-3 रोटी लेके जाते थे तो डालते थे, सारी चिड़िया हमारे पास ही बैठ जाती थी आगे, और यहाँ मोबाइल रखा, मोबाइल पर ही चिड़िया बैठ जाती थी आगे शायद वो मोबाइल देखने के लिए आती होगी सेल्फी लेने आती तो सचमुच जो प्रकृति की गोद में जो संरक्षक हैं वो भी हमको उतना ही चाहने लग पड़ेंगे। इसलिए बाबा बच्चों चिड़िया को क्या कहते, बच्चे को, बच्ची आज बच्ची आई नहीं है, जब चिड़िया आती थी सांप को बच्चा कहते थे, इस बच्चे को पकड़ के टोकरी में उठा के बाहर वहां छोड़ के आओ, दूध पिलाओ तो बाबा में कितना प्यार था उन चीजों से, है ना। बंदर का बच्चा था, एक ऊंट का फोटो है, बाबा ने ऊंट को ऐसे दबाया हुआ है बगल में, तो वो बाबा भी कितना प्यार करते थे, क्योंकि हमारे साथ में 84 जन्म हमारे साथ में तो है ना, किसी न किसी रूप में। तो अभी से हमको उनके प्रति प्यार रखना चाहिए, अभी से उनकी पालना करनी चाहिए, तभी तो हमारे प्रति वो रहेंगे ना। बाबा ने कहा ना, तुम अकेले ने, तुम्हारे पीछे कौन है, संडे ए परसों की मुरली, रॉयल फैमिली है, प्रजा है सारी, रॉयल प्रजा है, भगत है, रजो सतो तमो तीनों प्रकार के भगत हैं, तो हमारे पीछे कितनी सारी है। तो ये जीव जंतु भी तुम्हारे पीछे हैं, अभी तुम्हारी प्रजा में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी तो साथ साथ रहेंगे ना, वहां तो भी पेड़ पौधे पंछी हैं जी, सामग्री है, मनोरंजन की सामग्री बन जाएगी। बाबा ने प्रकृति के बारे में कितनी, हाँ चूहे के लिए देखो, हाँ चूहे के लिए देखो, अगर उसमें एक चूहे का मंदिर यहाँ करनीगोर में है, ये बीकानेर के पास में है, उसको करनी माता कहते हैं, और वहां हजारों की संख्या में चूहे हैं, और जितना भी भक्त आके डाल के आते ना, तो चूहे वो पड़ के खाए पड़े रहते हैं, ऐसे आप कुछ भी करते रहो कुछ नहीं कहेंगे उसको। तो जो चूहे वाली बात कही है, अगर वहां उनसे सुरक्षा करनी है तो रोज उनको अपना अलग से हिस्सा रख देने का, वो उसी को खाएंगे आके क्योंकि चूहा तो हमारा बाहन है ना, अब बाहन को नहीं खिलाएंगे, किसका बाहन है, गणेश का बाहन है वो, तो वहां अगर थोड़ा सा हिस्सा रख देंगे और रोज उनको कहेंगे कि आपके लिए यही हिस्सा, तो आप ये खा के जाओ, भगाना नहीं उनको, तो प्यार तो करना पड़ेगा उनसे अब है नहीं? हाँ, क्योंकि जहाँ जो सेंटर पर रहने वाले लोग है वो भी तो चला गए ना, तो आपके वाइब्रेशन को जा रहे हैं। एक बार हम एक किसी प्रोग्राम में गए थे, तो वहां ये इसका था ग्राम विकास वालों का, तो वहां भाषण चल रहा था, तो जो लोग कहते हैं एसडीएम भाषण दे रहा था वहां, तो लोगों ने कहा कि ठीक है हमको आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, यहां जो हमारे खेती में बंदर खा जाते हैं खेती को, आप बंदरों को हटा दो, बस इतना ही कर दो। तो किसी ने एक वहां अपना अनुभव सुनाया कि हम इतना खेत बंदरों के लिए रखते थे, वहां बंदर उसी में आते, बाकी खेत में नहीं आते वो। तो हमारी भावना उतनी, क्योंकि प्रकृति किसकी है, प्रशिक्षण दिया, प्रकृति किसकी है, वो तो उनकी है, हम तो उनके राज्य में बैठे हुए हैं, एक कांटों का जंगल बन गया हुआ, जंगल में तो जानवर रहेंगे ना अभी, तो हमारी मेंटेलिटी भी वैसी हो गई है, तो उनका तो कुछ दायित्व, उनका भी तो कुछ हक है ना, उसके ऊपर अधिकार है, तो उनका अधिकार उनको देना ही हमारी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसके लिए प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व भी हैं, कैसे प्यार करना है, हम अपना प्रकृति को सहन करना है, सर्दी सर्दी गर्मी धूप ठंडी बारिश हो कुछ हो तूफान हो ये सब सहन करना है। हाँ सहन के साथ साथ एंजॉय करना है इसका भीगते हुए आने का। इधर जब बारिश हो ना, हाँ जी हाँ बारिश में हाँ, जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं भूकंप होता है तो उसमें अपने मन को हलचल में रखना। हमने देखा एक बार रात को हम यही क्लास में बैठे हुए थे, हम भी इसी सोफे पर बैठे थे तो हाँ ऐसे जोर से भूकंप आए जैसे झूला झूल रहे हैं, तो हम उठ के थोड़ा नहीं तो हम तो मजा ले रहे थे उसका। तो उसमें भी हमको अचल अडोर रहकर अपने अच्छे वाइब्रेशन देने, गुड वाइब्रेशन, क्योंकि जो आत्माएं इन आपदाओं का सामना नहीं कर पाती हैं उनको शक्ति देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो हमको बाबा ने रखा हुआ है। तो उसमें भी अपने विचारों को स्थिर बनाकर रखना चाहिए, लेकिन उसकी पहले से हमको प्रैक्टिस चाहिए। जब भी हम योग में बैठते हैं तो योग में भी अगर हमारा मन हलचल होता है अर्थात मन के अंदर ही भूकंप आ रहा है, तो हमको एकाग्रता बढ़ानी है दिन प्रतिदिन, और एकाग्रता की शक्ति भी प्रकृति बढ़ाने में मदद करती है। तो बहुत सारी चीजें प्रकृति सीखने को मिलती हैं, लेकिन थोड़ा हमको इसके प्रति थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, उसके प्रति हमारी प्यार धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो ये सब चीजें हैं, क्या क्या सिखाती है, क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। हाँ प्रकृति हमको साक्षी दृष्टा रहना सिखाती है, ये भी हमने सोचा था, वो साक्षी होकर रहने दिखाती। प्रकृति कभी किसी को दुख हो रहा है, कोई मर रहा है डूब रहा है, सोचती है कुछ, वो अपने साक्षी होकर देख रही है। उसी तरह हमको भी साक्षी भाव में रहना है, हमको अपने मन को हलचल में नहीं लाने का, तो साक्षी भाव में सीखना, दुखी नहीं होना उसमें। हाँ जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ वही ना, प्रकृति गोद में जाओ तो म्यूजिक कितना अच्छा लगता है, तितलियां या पंछियों की झिंगुर चिल्लाता है, जब ये अपना गर्मियां आती हैं तो एक छोटा सा झिंगुर होता है वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के वास्तव में मर जाता है, उसकी आयु ज्यादा लंबी नहीं होती और है वो मर जाता है चिल्ला चिल्ला के, उसका फूट जाता है अंदर से, उसका नाम मैं भूल गया, नहीं टिड्डी नहीं, टिड्डियां तो दूसरी है, टिड्डियां तो फसल को चट कर जाती है, नहीं लेकिन एक और है वो भूल गया, सर्दी गर्मियों में निकलता है वो, और वो इतना जोर से चिल्लाता है, इतने म्यूजिक अच्छा होता है गर्मियों में कि उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जब चिड़िया उसको खाने आती है ना, चिड़िया वास्तव में उसको खा जाती है, लेकिन जब वो जोर से चिल्लाता है तो उसका फर्र करते चिड़िया भाग जाती है वहां से। तो वो हर एक चीज से सीखने को मिलता है, चींटी है, चींटी से सीखो कितना अपने से कितना ज्यादा गुना भार उठाती है वो, कितना 7 गुना 10 गुना अभी बढ़ गया होगा ना, ये तो पहले क्या था तो अपने से कई गुना बार उठा लेती है वो, है ना, यानी डिसिप्लिन, वो लाइन में चलती हैं, डिसिप्लिन भी जनरल सिखाते हैं, जो पशु पंछी जानवर है कितने डिसिप्लिन से चलते हैं, तो ये भी हमको सीखना है। और हाँ मिल बांटकर खाने के लिए, तो अगर हम उनको भोजन डालते तो उनको विश्वास होता ना, तो उसकी फैमिली होती होगी ताया चाचा काका मामा तो वो उसको बुलाती है, और कोई कोई चिड़िया दूसरे को नहीं खाने देती है, अर्थात वो पड़ोसी देश की होगी उसको खाने नहीं देगी, तो उनमें अनुशासन होता है, प्यार होता है आपस में, तो वो भी हमको सीखना है, मिल बांट कर खाना है। और है? हाँ दृढ़ता है, देखो अभी ये जो गुरैया है कैसे हो घोंसला बनाती है, वो कितना मेहनत करती है, मिट्टी का घोंसला उतना कारपेंटर भी इतना मुश्किल बना पाता है वो, कितने उसमें एक दिमाग है उसके अंदर, तकनीक है, जैसे एक बहुत बड़ा इंजीनियर है था वो, उसको वहां उसके अंदर सांप नहीं घुस पाता, ऐसे बनाती है वो बिल्कुल कांटे वाले उसके पेड़ के ऊपर, बबूल का पेड़ है कोई भी होता है उसके अंत में बनाएगी और अंत में लटका रहेगा वो घोंसला, कितना सुंदर घोंसला होता है, और वो हौसला हारती नहीं है, कितने तिनके उठा उठा कर लेके जाती है वो, बनाती रहती, और कई बार तिनके फिर गिर जाते हैं फिर बनाना शुरू कर देती है। आप कहीं भी देखो घर में घोंसला बनाती है, कहीं गिलहरी होती है, गिलहरी अपना घोंसला बनाती है, थकती थोड़ी नहीं वो, तो अथक होकर हर प्राणी भी लगा हुआ है, प्रकृति भी अथक होकर हमारी सेवा कर रही है, तो हमको भी इस पुरुषार्थ में अथक होकर लगे रहना, 20 नाखूनों का जोर एडी से चोटी तक, और क्या करती है। हाँ प्रकृति को सकाश देना बहुत सुंदर तरीके हैं प्रकृति को सकाश देने के, तो जी मुख्य रूप से एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, जिसमें जैसे क्षमता है जिसको जैसा अच्छा लगे, खुली ऑफर है फ्री स्टाइल। तो जैसे समझ लीजिए 5 प्रकृति के तत्व हैं, तो सबसे पहले किसको देंगे, चलो सागर को समझ लीजिए, पानी को जल को सकाश देना है, तो आकाश से चालू उठ करते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने का, ऊपर से नीचे आना धड़ाम सहज होता है, नीचे से ऊपर आना मुश्किल होता है, ठीक है, तो ठीक है ऊपर से नीचे आते हैं, तो पहले हमको आकाश में फरिश्ता सूक्ष्म शरीर धारण करके, फरिश्ता रूप धारण करके आकाश की परिक्रमा करनी है। उसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर में एरोप्लेन उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, तो हम जैसे एक पारदर्शी हेलीकॉप्टर है और पूरी ब्राह्मणों की फौज बैठी है और हम आगे कैप्टन है, बाबा हमारे बाजू में बैठा हुआ, मम्मा भी इधर बैठी है और शिव बाबा हमारे ऊपर ही है, तो पूरी ब्राह्मणों की फौज आकाश देते हुए जा रही है, पूरे विश्व का चक्कर लगा रही है, और हमारे से हजारों फरिश्ते निकलकर पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं उतने फरिश्ते निकलकर जा रहे हैं, तो पूरे आकाश में आकाश जा रही है और उस आकाश से आत्माओं को या प्रकृति को या जो भी पेड़ पौधे प्राणी है जीव जंतु उन सबको आकाश जा रही है। तो ये आकाश के माध्यम से आकाश भी पवित्र हो रहा है, वो वाइब्रेशन प्योर वाइब्रेशन से प्योर एनर्जी से आकाश भर रहा है। इसी तरह से जल की बात करें तो अब धरती जी जल के ऊपर चलना या फिर समुद्र के अंदर ही चले जाना बिल्कुल, अब वहां होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि सारा संकल्पों से खेल है ना। कुछ दिन पहले एक किसी का फोन आया था, बोला हमको ना जल से पानी से बहुत डर लगता है, तो बोला फिर हमने क्या किया, उन्होंने खुद ही बताया कि हमने क्या समुद्र के अंदर बैठ गए तो हमारा डर धीरे धीरे अभी पानी को देखने से कम हो गया है, नहीं तो पहले पानी को देखने से डर लगता है। तो समुद्र के अंदर बैठ जाना क्या, वहां देखना कितने अनेक प्रकार के जीव जंतु आ रही हैं, वो मछलियां आ रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं, वो अनेक प्रकार के तरह तरह के जीव जंतु आ रहे हैं, तो सबको सकाश जा रहा है, तो पानी के अंदर बैठ जाना। अब कितनी देर ऊपर से माया ढूंढती रहेगी, कहां गए, हम अंदर में बैठे रहेंगे पानी के अंदर है ना, वो उसको मिलेंगे नहीं, तो पानी के अंदर बाबा ने कहा ना ज्ञान सागर में समाये रहो, तो पानी के अंदर ऐसे धरती के ऊपर फरिश्ता बनकर चलना, सकाश देना उसे, बाबा कहते ना पटर पटर करके नहीं चलना, जैसे चप्पलें पहनते थे तो धरती को भी उतना दर्द ना हो, हमारा जो चलना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ है तो तकलीफ को दूर करने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए है ना, नहीं तो सवेरे सवेरे होता है अमृत वेले से चप्पलों की आवाज आती है खूब, तो भी हमको धीरे धीरे चलना चाहिए, या नीचे का जो सोल होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए थोड़ा, जब भी चप्पल नहीं खरीदते हैं तो उस तरीके से खरीदना है। तो ये है, धरती को सकाश दे सकते हैं, पानी को सकाश देते हैं, अग्नि को सकाश कैसे देंगे, सोच रहे हैं बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी है और मैं उसके अंदर में समा गया हूं एकदम, और मैं खुद ही ज्वालामुखी हूं है ना, खुद ही ज्वालामुखी हूं, मेरे अंदर स्वयं ज्ञान सूर्य वृक्ष में बैठा हुआ है, भले बाहर चिपका लो उसको या अंदर में बिठा लो, और हमारी आंखों से आग के गोले निकल रहे हैं, मैं खुद ही अग्नि हूं है ना, ज्ञान अग्नि हूं, यज्ञ की अग्नि हूं, इस राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की अग्नि हूं, तो इस अग्नि से अनेक प्रकार की प्योरिटी की लपटें फैल रही हैं, तो इस तरीके से अग्नि को सकाश दे सकते हैं। और पांचवा कौन सा रह गया, हवा। हवा तो बहुत सहज है, अब ये सारे जो चारों करते जाएंगे तो जो भी हमारे वाइब्रेशन निकले हवा में फैलते जा रहे हैं और सारे संसार में फैलते जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ओम शांति।
खुशबू है कैसे वो आती है, तितली कहां से ये सारे रंग लाती है, हवा को बांसुरी बनाती है संगीत कैसे, कोयल ने सीखे हैं ये इतने प्यारे गीत कैसे, है ये अजूबे लेकिन एक और अजूबा है, धरती से अंबर से पर्वत से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है, पहली नजर में ही जो तो दिलों में हो हर वो करार अजूबा है, एक अजूबा है, थारा रा 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 र
सोचो ये रोशनी इसमें आई कैसे, तन में जो है जान वो किस तरह है, मन में है अरमां तो किस तरह है, कह भी दो ये भी तो कोई अजूबा है। से जो खुशबू आए अजूबा है,
तितली जो सारे रंग लाए अजूबा है,
बांसुरी का ये संगीत अजूबा है।